أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. یہ اس کتاب کا 10th چیپٹر ہے 3 منٹ قیامت کے. انشاءاللہ بحث کو آگے بڑھاتے ہیں. یہ جناب کہتے ہیں کہ جیسے جیسے میرے حساب کی بررسی ہو رہی تھی, اس کا کیلکولیشن ہو رہا تھا اور میرے اعمال مٹائے جا رہے تھے, تو دیکھ رہا تھا کہ میرے کیونکہ نیک اعمال کم ہو رہے تھے اور برے اعمال بڑھ رہے تھے, تو میرے دائیں ہاتھ کی طرف کی آگ شولاور ہوتے جاتی اور اس کی گرماہٹ مجھ تک بہت شدت سے پہنچتی, جیسے کہ بس ابھی مجھے جلا کر جھلس دے گی. اور میں کچھ نہیں کر پا رہا تھا, بس وہاں کھڑا ہوا تھا اور اپنے اعمال کو دیکھ رہا تھا. سوچ رہا تھا کہ اگر دنیا میں ہوتے تو کسی نہ کسی طرح کچھ نہ کچھ کہہ کر اپنے اعمال کی دفاع کرتے, اعمال کو بچا لیتے, کوئی نہ کوئی بہانہ لے کر آتے. اور جیسے کورٹ میں ہم لڑ کر جھوٹ بول کر کوئی نہ کوئی بہانہ کر کر اپنے اعمال بچا لیتے, یہاں ایسا نہیں ہو سکتا. یہاں پر سب کچھ بہت دقیق اور بہت کیئرفلی انالائز کیا جا رہا تھا, تو یہاں کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا, کیونکہ نہ صرف تمہارے اعمال دکھائے جا رہے تھے بلکہ تمہاری نیتوں کا بھی کیلکولیشن کیا جا رہا تھا, بلکہ تمہاری نیتوں کو بھی دیکھا جا رہا تھا کہ اعمال تو انجام دیا لیکن کس لیے, آیا خدا کی خوشنودی کے لیے یا ریا کرنے کے لیے یا دوسروں کو خوش کرنے کے لیے. تو بس مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں ایک بکرا ایک گوسوند کی طرح وہاں کھڑا ہوا ہوں اور اپنے نام اعمال کو دیکھ رہا ہوں, اور میرے نام اعمال کا حساب کتاب کیا جا رہا ہے, میرے اچھے اعمال کا حساب کتاب کیا جا رہا ہے, برے اعمال کا حساب کتاب کیا جا رہا ہے. جو اچھے اعمال جس میں تھوڑا بھی نقص ہو, جو میں نے صرف خالصانہ خدا کے لیے انجام نہیں دیا, وہ مٹ جاتے اور برے اعمال ابھر کر آ جاتے. اور کوئی عمل نیک عمل جو میں نے اچھے سے خدا کی خوشنودی کے لیے انجام دیا, وہ باعث بنتا کہ کچھ میرے برے اعمال حذف ہو جاتے. اور جیسے جیسے برے اعمال کی تعداد بڑھ رہی تھی, گرمی بڑھتی جا رہی تھی, آنکھ کی گرمی بڑھتی جا رہی تھی, پھر میں نے احساس کیا کہ کسی وجہ سے یہ آنکھ کی گرمی بڑھنے کے بعد, میرے بدن کو گرماہٹ سے جلانے کے بعد بھی میرے بدن کے 3 حصے تھے جس پر اس کی گرماہٹ محسوس نہیں ہو رہی تھی, میرے ہاتھ, میرا چہرہ اور میرا سینہ. فوراً اس بات کے جواب کی طرف متوجہ ہو گیا. میں سمجھ گیا کہ کیوں میرا سینہ, میری صورت اور میرے ہاتھ نہیں جل رہے تھے. بچپن سے میں میرے والد کے ساتھ عزاداری میں جایا کرتا تھا, مجلسوں میں جایا کرتا تھا, ماتم میں جایا کرتا تھا, اور دیکھتا تھا کہ میرے بابا جان جب بھی وہ امام حسین پر اشک بہاتے تو وہ اشک اپنی صورت پر اور اپنے سینے پر مل لیتے, اور ہم ان سے پوچھتے کہ بابا جان آپ ایسا کیوں کرتے ہیں, تو وہ کہتے تھے بیٹا ابھی تم نہیں سمجھ پاؤ گے, روز قیامت جب حساب کتاب ہوگا تب تمہیں سمجھ آئے گا کہ ان اشکوں کی عظمت اور ارزش کیا ہے, ان اشکوں کی اہمیت اور ان کی ویلیو کیا ہے. تو ہم چپ چاپ اپنے بابا کو دیکھتے تھے, اور جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے ویسے ہم نے بھی ہمارے بابا کی عادت کو اپنا لیا کہ جب بھی ہم امام حسین پر آنسو بہاتے تو یہ آنسوؤں کو اپنے چہرے پر اور اپنے سینے پر مل لیتے. اور آج مجھے میرے بابا کی بات سمجھ آ رہی ہے کہ کیوں انہوں نے اپنے چہرے پر اور سینے پر یہ آنسو ملے تھے, اور ان آنسوؤں کا اثر مجھے آج دکھائی دے رہا ہے کہ چاہے کتنا بھی جہنم کی آگ شولاور ہو جائے, وہ میرے صورت, میرے ہاتھ اور میرے سینے کو نہیں جلا پا رہی تھی. باقی کا بدن میرا گرمی سے تپ رہا تھا لیکن میری صورت, میرے ہاتھ اور میرے سینے پر ایک عجیب سی ٹھنڈک تھی. اور ایک بات جو میری سمجھ آئی وہ یہ تھی کہ اگر میں نے کوئی گناہ کیا ہے اور اس گناہ کی فوراً میں نے توبہ کی ہے, خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر رو کر میں نے معافی مانگی ہے, تو اس معافی کا اور توبہ کا اثر یہ تھا کہ خدا کی رحمت اور مہربانی کی وجہ سے وہ گناہ میرے اعمال سے مٹائے جاتے. یعنی یہ کہ اگر میں گناہ کروں اور توبہ کروں اور پھر دوبارہ اس گناہ کی طرف نہ بڑھوں اور اسے انجام نہ دوں, تو حتیٰ جو گناہ میں نے کیا ہے وہ گناہ بھی پاک کر دیا جاتا اور مٹایا جاتا. یہ وہی رحمان اور رحیم ہونے کا وعدہ ہے خدا کا کہ اگر تم گناہ کرو اور توبہ کرو گے تو میں تمہارے گناہ کو مٹا دوں گا اور محو کر دوں گا. حتیٰ اگر حق الناس ہم बोशे, यानी अगर हक्कुन नास भी है, मैं किसी का बेदेकार हूँ, किसी का पैसा मेरे पास रह गया है और मैं उसे नहीं दे पाया, तो अगर मैं जो शख्स है उसे नहीं जानता या उसे नहीं ढूंढ पाया, तो किसी बहाने रद्द मजालिम देने के बहाने अगर मैंने मेरे मर्जा के दफ्तर में रद्द मजालिम दे दिए और हाकिम शर तक मैंने ये रद्द मजालिम पहुँचा दिए, तो हत्ता हक्कुन नास भी मेरी किताब से मिटा दिया गया और पाक कर दिया गया। और अगर कहीं ऐसा हो जाए कि एक छोटा बच्चा भी हमसे तलबकार रहे, यानी हमारी गर्दन पे उसका उधार रहे और उसने हमें हलाल नहीं किया, तो फिर इस वादी में सब्र करना होगा, रुके रहना होगा जब तक कि वो इस वादी में नहीं आता और हमें हलाल नहीं करता, हमें माफ़ नहीं करता, या फिर हमारे इस उधार के बदले कुछ हमारे आमाल नहीं ले जाता जब तक हमारा हिसाब क्लियर नहीं होता। अच्छा, आप हजरत की खिदमत में मैं ये बयान कर दूं कि अगर आप रद्द मजालिम के बारे में नहीं जानते, तो रद्द मजालिम कुछ इस तरह से है कि मान लीजिए हमारे हाथ से किसी का नुकसान हो गया, या मान लीजिए हमारे हाथ से किसी का कोई माली नुकसान हो गया, मखसूसन माली नुकसान हो गया। मान लीजिए मैं जा रहा हूँ कहीं से और चलते चलते मेरा हाथ लगकर किसी दुकान से थोड़ी बहुत दाल गिर गई है, या मान लीजिए मेरे हाथ से किसी की कार पर कोई स्क्रैच आ गया है, या फिर मेरे बच्चे से खेलते खेलते किसी के घर का आईना टूट गया है, या मेरे ही हाथ से किसी का आईना टूट गया है, या किसी भी वजह से किसी शख्स का मेरे हाथों माली नुकसान हुआ है, और फिर इस शख्स को अगर मैं नहीं जानता, या बहुत सालों बाद मुझे याद आया या समझ आया कि इस शख्स का मैंने माली नुकसान किया है, और अब मैं इस शख्स को ढूंढने निकलता हूं और लेकिन मैं इसे ढूंढ नहीं पाता हूं, मान लीजिए ये एक्स शख्स जो है ये इनका इंतकाल हो गया, तो अब मुझ पर ये वाजिब है कि मैं इनका पैसा लौटाऊं, क्योंकि इनका नुकसान जो हुआ है वो मेरी गर्दन पे बाकी है। तो या मैं खुद इस शख्स तक पहुंचाऊं, अगर मैं इन तक नहीं पहुंचाता पा सकता हूं या नहीं पहुंचा पाया, तो इनके वारिस तक पहुंचाऊं, अगर इनके वारिस भी मेरे दस्तरसी में नहीं है या मुझे नहीं मिल पा रहे हैं, बहुत ढूंढने के बाद भी इनका कुछ पता नहीं चल रहा है, तो फिर एक बेनिफिट जो इस्लाम ने हमारे लिए रखा है वो ये कि हम हमारे हाकिम शर के पास जाएँ या मर्जे तकलीद के पास जाए और उनके सामने ऐलान करें और उन्हें बताए कि मेरे हाथों मसलन 10 साल पहले किसी की गाड़ी का नुकसान हो गया था, एक्सीडेंट हो गया था, या फिर रात के अंधेरे में मैं गाड़ी चला रहा था और मेरी गाड़ी से किसी के पार्किंग की हुई गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और मैं बिना बताए वहाँ से निकल गया, तो ये पैसा मेरी गर्दन पे मसलन बाकी है, तो अब मैं इसे फिटाना चाहता हूँ, इसे देना चाहता हूँ और ये मेरी गर्दन से साकित करना चाहता हूँ, तो फिर वो पैसा आपको इनके दफ्तर में देना पड़ेगा। या तो वो ख़ुद हिसाब करके बताएंगे, या फिर अगर आपको पता है कि कितना हुआ है तो ये आपको उनके दफ्तर में देना पड़ेगा। इस माल को जो आप देते हैं दफ्तर में, इसे कहते हैं रद्द मजालिम, यानि आपके हाथों जिस शख्स के हक़ में जुल्म हुआ है उसको रद्द करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए, उसको नलीफाई करने के लिए आप कुछ मबलग, कुछ पैसा अपने मर्जा के दफ्तर में देते हैं और इसे कहते हैं रद्द मजालिम। तो वो कहते हैं कि ये जनाब कहते हैं कि अगर किसी के हक़ में कुछ पैसा बाकी रह गया है या किसी हक़ को नास हमारे गर्दन पे रह गया है, तो खुदा ने रहमत का दरवाज़ा इस तरह खोला है हमारे लिए कि हम मर्जा की ऑफिस में जाकर रद्द मजालिम पे करें और ये हक़ हमारी गर्दन से साकित हो जाएगा। तो ये जनाब कहते हैं कि जहाँ मैं मेरे गुनाहों का असर देख रहा था और गुनाहों के असर में जो आग शोलावर होकर मुझे जला रही थी, वहीं पर मैं खुदा की रहमत का भी एहसास कर रहा था कि जहाँ जहाँ मैंने तौबा की है वहाँ वहाँ मेरे आमाल, जो बुरे आमाल थे, जो गुनाह मैंने किए हैं, जहाँ पर मैंने शिद्दत से तौबा की है उन्हें मिटा दिया और खुदा ने अपने रहम का वादा निभाया, और जहाँ जहाँ ये आग बढ़ जाती लेकिन मैंने अहलुल बैत पर आंसू बहाए और उन आंसुओं को अपने सूरत पर और सीने पर मला है, तो ये आग मुझे जला नहीं पा रही थी। ये भी एक लुत्फ और खुदा का रहम था। वो कहते हैं कि बस इस आलम में मैं खुदा की इस रहमत को इतनी शिद्दत से महसूस कर पा रहा था कि दिल से खुदा के लिए शुक्रिया निकल रहा था। इंशाल्लाह आगे का मतलब अगले दर्स में बताएंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। ये 11th लेक्चर है इस किताब का 3 मिनट क़यामत के। ये जनाब कहते हैं कि मैं जवानी से ही मेरे वालिद ने मुझे सिखाया था कि बैतुल माल के निस्बत और हक़ुन नास के निस्बत बहुत होशियार रहना और बहुत केयरफुल रहना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी गर्दन पे कोई हक़ुन नास आ जाए, और मख़सूसन अगर कोई बैतुल माल का हिस्सा तुम्हारी गर्दन पे बाकी रह जाए और तुम्हारे ज़िम्मे आ जाए तो इसे निभाना और पिठाना बहुत ही सख्त काम है। इसलिए बेटा बहुत ध्यान रखना, बहुत केयरफुल रहना कि तुम्हारी गर्दन पे किसी हक़ुन्नास ना आ जाए या बैतुल माल ना आ जाए। तो ये कहते हैं कि मैं बचपन से ही बहुत ज़्यादा केयरफुल रहता था कि मेरे हाथों किसी इंसान का, किसी शख्स का कोई माली नुकसान, जानी माली नुकसान ना हो जाए, क्योंकि अगर हक़ुन्नास गर्दन पर आ जाए तो बहुत काम सख्त हो जाता है। और यही बात जो हमारे बाबा ने हमें सिखाई थी वो मैं कई बार मस्जिद और मिंबर में, सुखनरानी में, स्पीच में, लेक्चर में सुन चुका था, तो इसलिए ये बात मेरे अंदर बहुत गहराई से उतर चुकी थी। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा केयरफुल रहता था इस मामले में। इसीलिए जब मैं सिपाह में था और वहाँ के ट्रेनिंग सेंटर में और वहाँ के ऑफिस में काम करता था, तो मैं बहुत ज़्यादा शिद्दत से केयरफुल रहता था कि जब भी मैं वहाँ के ऑफिस में हूँ तो मैं कोई अपने पर्सनल काम में इन्वॉल्व ना हो जाऊँ। यानी मेरे ऑफिस के जो टाइमिंग्स होते थे 9 बजे से 6 बजे तक, इसमें मैं कोशिश करता था कि मैं कोई भी पर्सनल काम अंजाम ना दूँ, और इत्तेफाकन कोई पर्सनल काम आ ही जाता तो फिर इस पर्सनल काम का जुबरान करने के लिए, उसको कंपनसेट करने के लिए, उसकी भरपाई करने के लिए मैं एक्स्ट्रा घंटे काम करता था। अब देखें, मैं आपको यहाँ बता दूँ, जब हम पर्सनल काम की बात कर रहे हैं तो ये जनाब किस चीज़ों की तरफ इशारा कर रहे हैं, क्योंकि हमारे कल्चर में ये बहुत डिस्कस नहीं किया जाता है। लेकिन जब हम कहते हैं कि ऑफिस आवर्स में आप पर्सनल काम अंजाम ना दें, यानी ये कि अगर आपको कोई कॉल आ जाता है और वो आपका ऑफिस का कॉल नहीं है, पर्सनल कॉल है, चाहे फिर वो आपके वालदैन की तरफ से हो, आपकी जोजा की तरफ से हो, आपके भाई बहन की तरफ से हो, या फिर आप व्हाट्सएप चेक कर रहे हैं, या फिर व्हाट्सएप पे वीडियो देख रहे हैं, या फिर आप किसी को मैसेज कर रहे हैं, या फिर आप अपनी मसलन शॉपिंग लिस्ट बना रहे हैं, या कोई भी ऐसा काम जो आपके ऑफिस के काम से रिलेटेड नहीं है, तो फिर ये हो जाएगा आपका पर्सनल काम। यानी ये कि अगर मैं 9 बजे से 6 बजे तक ऑफिस जाता हूँ और 9 बजे से 6 बजे तक काम करने के लिए ऑफिस वालों से पैसे ले रहा हूँ, और इसमें मैं तकरीबन 1 घंटा अगर मैं अपना पर्सनल काम अंजाम दे रहा हूँ, जिसमें मेरे मैसेजिंग है, लिस्ट बनाना है, ऑनलाइन शॉपिंग है, या जो भी इस तरह का काम, तो ये सारा पैसा मेरी गर्दन पर जमा होता है और मैं इस कंपनी के लिए बेदेकार बन जाता हूँ। यानी ये कंपनी के निस्बत मेरी गर्दन पर एक उधार चढ़ जाता है कि जो कयामत के दिन मुझसे पूछा जाएगा कि तुमने इतने पैसे तो लिए लेकिन काम तुमने इतना नहीं किया। और मख़सूसन अगर आप एक इस्लामिक कंट्री में हैं, और इस्लामिक कंट्री में जहां बैतुल माल है जो कि खुम्स के पैसों से और इमाम के पैसों से चलता है, तो ये बैतुल माल जो है ये इसमें हर वो सिटीज़न जो कंट्री का है उसका एक हिस्सा होता है। तो अगर आप वो बैतुल माल लेते हुए अगर आप अपने काम में कोताही करते हैं तो फिर ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी हमारी गर्दन पर चढ़ती है। तो ये इसी तरफ इशारा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जब भी मैं ऑफिस में हुआ करता था तो मैं किसी भी पर्सनल काम में इन्वॉल्व नहीं होता था। मैं मेरी हद अक्सर कोशिश करता था, मैक्सिमम कोशिश यही करता था कि मैं कोई भी पर्सनल काम मेरे वर्किंग आवर्स में अंजाम ना दूँ, और इत्तेफाकन कुछ ऐसा आ जाता और मजबूर हो जाता कि मैं मेरा कोई पर्सनल काम अंजाम दे दूँ, तो फिर फौरन मैं मेरे वर्किंग आवर्स को 6 बजे की जगह 7 बजे की जगह 8 बजे तक बढ़ाकर इसे कंपनसेट करता ताकि मेरी गर्दन पर कोई बैतुल माल बाकी ना रहे। और हमारे नंबर ऑफ़ आवर्स एवरी डे हम जो काम करते थे वो हमें रजिस्टर करवाना पड़ता था कि हमने रोज़ कितने घंटे काम किए। तो कभी कभी मैं अपने नंबर ऑफ़ आवर्स कम लिखवाता था ताकि कहीं जाने अनजाने में मुझसे कोई पर्सनल काम ना हो जाए, और उसके बदले अगर मैं बैतुल माल से सैलरी ले लेता हूँ तो मेरी गर्दन पे ये बाकी ना रह जाए। इसीलिए मैं अक्सर मेरे थोड़े नंबर ऑफ़ आवर्स कम लिखवाता, या फिर मैं एक्स्ट्रा नंबर ऑफ़ आवर्स काम करता और उसके इवज़ में, उसके बदले में मैं कोई सैलरी नहीं लेता था। और हमेशा मेरे दिल में ये ख्याल रहता था कि सैलरी कम मिल जाए मुश्किल नहीं है, लेकिन हलाल हो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए मेरी पूरी कोशिश होती थी कि मेरी सैलरी का एक एक रुपया, एक एक सिक्का, एक एक सेंट हलाल हो। और ऑफिस में भी मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करता था, जितना हो सकता था कोशिश करता था कि जो भी काम मुझे दिया जा रहा है वो पूरी पूरी कामयाबी के साथ और पूरे कमाल के साथ उसे अंजाम दूँ। यानी कोई भी काम जो मुझे दिया जाता वो मैं नाकस नहीं रखता, वो मैं इनकम्प्लीट नहीं छोड़ता, और कोशिश करता कि उसे ना सिर्फ कम्प्लीट करूँ लेकिन बेस्ट पॉसिबल वे में कम्प्लीट करूँ। और ये सारी चीज़ें मेरे नामे आमाल में लिखी गई थी। तो वो मलक जो मेज़ के पीछे बैठा हुआ था उसने कहा कि खुदा का शुक्र करो कि तुम्हारे गर्दन पे कोई बैतुल माल नहीं है, अगर बैतुल माल तुम्हारी गर्दन पे होता तो तुम यहाँ पर बहुत लंबे ज़माने तक इस वादी में रुके रहते, और हर वो ईरानी शख्स जिसके जिसका हिस्सा बैतुल माल में है उससे तुम्हें रिजायत लेनी पड़ती कि तुमने उसके बैतुल माल में उसने जो कॉन्ट्रीब्यूट किया है उस बैतुल माल में से सैलरी लेते हुए तुमने अपने पर्सनल काम अंजाम दिए, उस बैतुल माल से पैसे लेते हुए तुमने काम में कोताही की है, तो तुम्हें हर वो सिटीज़न जो गुजर चुका है और जो आने वाला है उन तमाम लोगों से तुम्हें रिजायत लेनी पड़ती। तो खुदा का शुक्र करो कि तुम्हारी गर्दन पे कोई बैतुल माल बाकी नहीं है। और वहीं मैं देख रहा था कई ऐसे लोग थे जो बड़ी गिरफ्तारी में मुब्तला थे, बड़ी मुश्किल में फंसे हुए थे। क्यों? क्योंकि जब वो अपना काम अंजाम दे रहे थे तो उन्होंने बैतुल माल की रियायत नहीं की, बैतुल माल के मामले में केयरफुल नहीं थे। बस सोचा कि बैतुल माल ही तो है, पैसा ही तो है, इसके बारे में क्या इतना सोच। अच्छा, ये बताता चलूं कि वहाँ पर ज़मान बिल्कुल नहीं था, इसी वजह से मैं ऐसे लोगों को भी देख पा रहा था जो मुझसे पहले दुनिया से चले गए थे, और ऐसे लोगों को भी देख पा रहा था जो मेरे बाद दुनिया से जाने वाले थे, यानी जिनकी अभी तक मौत वाक़ नहीं हुई थी लेकिन आइंदा में मौत वाक़ होने वाली थी। वहाँ मैं कितने ऐसे लोगों को देख रहा था जिन्होंने बैतुल माल से पैसों को चुराया था, बैतुल माल के पैसे चुराए थे और वहाँ मुश्किल में फंसे हुए थे। बेचारों की हालत ऐसी थी कि जब तक वो हर सिटीज़न इस कंट्री के जो थे उनसे हलालियत और माफ़ी नहीं मांगते वो आगे नहीं बढ़ सकते, बल्कि उनकी हालत ऐसी थी कि हत्ता वो लोग जो आइंदा में आने वाले थे, जो अभी तक दुनिया में पैदा भी नहीं हुए थे, वो जो आने वाले थे उनके लिए भी इन्हें मुंतज़िर रहना पड़ेगा कि वो आएँ और इन्हें हलाल करें और इन्हें माफ़ करें, तो फिर ये आगे बढ़ सके। देखिए, बैतुल माल का मामला इतना संगीन और इतना शदीद है, इसलिए इस मामले में बहुत शिद्दत से रियायत करना ज़रूरी है। और इसी किताब में मेरे नामे आमाल में एक सफ़े पे एक मतलब लिखा हुआ था कि जब मैंने उसे पढ़ा तो बहुत शिद्दत से डर गया, क्योंकि बैतुल माल का मामला था। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मेरे एक दोस्त ने कुछ शोहदा की किताबें जो है ये जम करके हमारे सेक्शन में लेकर आया था, यानी हमारा जो ऑफिस था इसके अलग अलग सेक्शंस थे, अलग अलग सेंटर्स थे, कुछ सेंटर्स शहर के इस तरफ थे और कुछ सेंटर्स शहर के उस तरफ थे। तो ये शख्स शोहदा के किताबें जमा कर कर ये हमारे सेंटर लेकर आया था, और उन्होंने कहा था कि इसे यहाँ रहने दो, यहाँ पर लोग आते हैं जाते हैं काम करते हैं, कभी उनके पास फ्री वक्त है या बैठ के लंच कर रहे हैं तो कभी ना कभी एक आध किताब उठाएंगे, एक आध सफ़ा पढ़ेंगे, एक आध पेज पढ़ लेंगे तो उनका कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाएगा, तो इन किताबों को यहाँ रहने दो। और ये बहुत अच्छी किताबें थी, तकरीबन एक साल तक ये किताबें वहाँ पड़ी रही, और फिर कुछ वहाँ पर सोल्जर्स आए, अफसर आए, उन्होंने उन किताबों को पढ़ा, उससे फ़ायदा उठाया, फिर ये किताबें ऐसी ही पड़ी थी और बहुत मुद्दत तक कोई उन्हें पढ़ नहीं रहा था, कोई उनका इस्तेफादा नहीं कर रहा था। और एक मुद्दत के बाद मैं इस सेंटर से दूसरे सेंटर पर शिफ्ट हो गया, मुझे वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो जब मैं जा रहा था तो मैंने सोचा कि ये किताबें तकरीबन एक साल से यहाँ पड़ी है और जितने लोग यहाँ पर है तकरीबन इन सब ने ये किताबों को पढ़ लिया है, तो क्यों ना मैं ये किताबें वो दूसरी सेंटर में ले जाऊँ ताकि वहाँ पर भी कुछ लोग इन्हें पढ़े और इससे फ़ायदा उठा सकें। फिर कुछ मुद्दत के बाद, कुछ टाइम के बाद मैंने देखा कि दूसरे सेंटर में भी इस किताबों का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हो रहा था, क्योंकि वहाँ लोग और ज़्यादा मशगूल थे और उनके पास फ्री टाइम बहुत कम था। तो फिर मैं ये किताबें वापस पुराने सेंटर पर लेकर आकर रख दिया, और जब मैंने ये माजरा अपनी किताब में देखा तो वो जो मलक मेज़ के पीछे बैठा था उसने इस माजरे की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये किताबें बैतुल माल थे और तुमने और वो उस ख़ास सेंटर के लिए लाई गई थी, और तुमने इजाज़त के बगैर इन किताबों को इस सेंटर से लेकर दूसरे सेंटर में रख दिया था, ये बैतुल माल में खयानत है, तुमने किसकी इजाज़त से ये काम अंजाम दिया। और अगर ये किताबें तुम वहाँ रख देते वो दूसरे सेंटर में और वापस नहीं लेकर आते, तो इस पहले वाले सेंटर में जितने सोल्जर्स और जितने अफसर आते ताअबद, इन सब से तुम्हें हलालियत तलब करनी होती, माफ़ी मांगनी होती कि इनके हिस्से का बैतुल माल, इनके हिस्से के किताबों को तुमने वहाँ से उठाकर दूसरे सेंटर में रख दिया और किसी से इजाज़त भी नहीं ली। मैं बहुत डर गया था। खुदा का शुक्र कि किसी बहाने ये ख्याल मेरे जहन में आया और मैंने ये किताबों को मेरे पुराने सेंटर में रख दिया था, वरना मैं ताअबद यहीं रह जाता और इन लोगों से माफ़ी मांगने में जुट जाता। और ऊपर से मैं तो ये सोच रहा था कि मैं कोई अच्छा और नेक काम अंजाम दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ के लोगों ने किताबें पढ़ ली है तो अब दूसरी जगह ले जाता हूँ ताकि वहाँ पर लोग पढ़ें और इससे फ़ायदा उठा सके। लेकिन इस नेक ख्याल के पीछे मुझे इस बात का भी ख्याल रखना है कि ये बैतुल माल है और बैतुल माल को यहाँ से वहाँ करने के लिए मेरे पास इजाज़त नहीं है। बगैर इजाज़त के ये काम करना यानी अपनी गर्दन पर आफत मोल लेना है। तो अजीज़ान, मैं यहाँ बताता चलूँ एक नुक्ता सिर्फ इजाफे, कि हम कभी मस्जिद में जाते हैं, कभी हरम में जाते हैं, कभी कहीं और जाते हैं, तो ये हमारी गर्दन पे ये बैतुल माल का ख्याल रहना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि हम कोई चीज़ वहाँ पर किसी तरह का नुकसान पहुँचा दे, मोहर तोड़ दे, या हमारे बच्चे खेलते खेलते किताब के पेजेस फाड़ दे, या फिर कोई ऐसी चीज़ कि हमने एक हरम से उठाई और दूसरे हरम में रख दी। ये सारी मुश्किलात और ये सारी बातों का ख्याल रखें, क्योंकि फिर ये बैतुल माल हिसाब होता है। तभी मैंने वहाँ पर अपने एक दोस्त को देखा जो बहुत ही बाइखलास और नेक और बहुत अच्छा शख्स था, वाकई बहुत अच्छा इंसान था। और इसने अपने सरदार से कुछ बड़ी अमाउंट ली थी और ये अमाउंट से इसे अपने सेंटर के लिए बहुत सारी चीज़ें ख़रीदनी थी, स्टेशनरी आइटम्स और दूसरे आइटम्स ख़रीदने थे। लेकिन बजाय इसके कि ये पैसा ये अपने सेंटर के तिजोरी में रखे, ये अपनी जेब में रख कर घर चला गया था। सोचा कि अगले दिन ऑफिस आते आते रास्ते में रुक कर ये सारी स्टेशनरी और ये नेसेसरी आइटम्स जो है वो ख़रीद कर आ जाएगा और दफ्तर में रख देगा। लेकिन सुबह वो ख़रीदारी करने से पहले ही उसका एक्सीडेंट हो गया और वो इस दुनिया से चला गया। और जब उसके फैमिली को इसके जेब से पैसे मिले तो इन लोगों को लगा कि ये पैसे इसके पर्सनल पैसे हैं और इस फैमिली ने ये पैसे को इस्तेमाल कर लिया और अपने ज़रूरियात पर खर्च कर लिया। तो ये दोस्त को मैंने देखा कि बड़ी मुश्किल में और बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ है। ये दौड़ा दौड़ा मेरे पास आया, मेरे हाथ पाँव गिड़गिड़ा कर थाम कर रोने लगा, कहा कि अगर मुमकिन है तो क्या तुम मेरे खानवा को, मेरे फैमिली को बता सकते हो कि ये पैसा मेरा नहीं था, ये पैसा बैतुल माल था, ये बैतुल माल को तुम उनसे कहो कि लौटा दो ताकि मेरी जान को यहाँ पर निजात मिले, ताकि मेरी जान को यहाँ बख्शिश मिल सके। कुछ बुजुर्गान वाकई सच कहते थे कि मौत बोल कर नहीं आती, बिना बताए आ जाती है। इसलिए हर चीज़ के लिए बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है। बैतुल माल अगर हमारी गर्दन पे है या किसी का हक उन्नास हमारी गर्दन पर है तो इसे जल्दी से जल्दी बिता दीजिए, जल्दी से जल्दी लौटा दीजिए और जल्दी से जल्दी निपटा दीजिए। क्या पता कब मौत आ जाए, बजाय इसके कि हम इसे टालते रहें, सोचते रहें कि हाँ अभी तो वक्त है, कल दे दूँगा या परसों दे दूँगा या एक हफ़्ता बाद दे दूँगा, या फिर मसलन खुम्स का मामला है, कई लोग सोच कि हाँ खुम्स है, हिसाब कर देंगे, दे देंगे, एक हफ्ता बाद दे देंगे, एक साल बाद दे देंगे, दो साल बाद दे देंगे, अभी तो हिसाब ही कहाँ हुआ है। ऐसा ना सोचे अजीज़ान, ये फिर हमारी गर्दन पर अगर बाकी रह जाता है तो फिर वहाँ पर हिसाब किताब में बहुत सख्ती की जाती है। एक रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मारूफ़ वाकया है कि जब वो सरज़मीन खैबर से हरकत कर रहे थे तब नागहान अचानक एक तीर आकर उनके असहाब को लगती, उनके सहाबी को लगती है और उन वो वहाँ शहीद हो जाते हैं। तमाम असहाब कहते हैं कि इंशाल्लाह इन पर जन्नत वाजिब हो, ये शहीद हो चुके हैं, इंशाल्लाह ये जन्नत में जाएंगे। तभी ये बात पैगंबर को बताई जाती है कि इनके सहाबी को तीर लगी है और वो शहीद हो गए हैं और इंशाल्लाह वो जन्नत में चले गए हैं। तो रसूल खुदा ख़बर देते हैं कि नहीं, वो जन्नत में नहीं गए हैं, क्योंकि उन्होंने जो आर्मी का लिबास लेकर आर्मर पहना था वो बैतुल माल का आर्मर था और उन्होंने किसी से इजाज़त लिए बिना उसे इस्तेमाल किया है। तो अब वो वहाँ पर बरज़ख में मुंतज़र रहेंगे जब तक कि वो हम सब से इजाज़त और हलालियत नहीं लेंगे, तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तभी एक दूसरा सिपाही उठ खड़ा होता है और कहता है कि मौला, मैंने तो बैतुल माल से एक मेरे जूतों की डोरी ली है और किसी से पूछा भी नहीं। तो रसूल खुदा फौरन फरमाते हैं कहते हैं कि फौरन उसे लौटा दो इससे पहले कि वो तुम्हारे पाँव में दोज़ख़ की आग को ना बंधे। और अजीज़ान यही नुक्ता है कि मैं भी इस बात की तरफ मुतवज्जह हो गया था कि बैतुल माल के मामले में बहुत ज़्यादा दिक्कत की ज़रूरत है, और ख़ुदा का शुक्र कि मैं बैतुल माल के मामले में बहुत ज़्यादा केयरफुल रहा हूँ। इंशाल्लाह आगे का मतलब अगले चैप्टर में। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। ये 12th चैप्टर है इस किताब का, 3 मिनट क़यामत के। ये जनाब कहते हैं कि जब हम हमारे आमाल की बररसी कर रहे थे, एनालिसिस कर रहे थे और इवेलुएट कर रहे थे, तो इनमें से कुछ आमाल ऐसे थे जो मेरे लिए बहुत यादगार थे। उसकी दलील ये थी कि हम अमल के बातिन को देख पा रहे थे और उसकी इल्लत और रीज़न को समझ पा रहे थे। और इस दुनिया में जिस चीज़ को हम चांस कहते हैं कि इत्तेफाक़ से या चांस से, मसलन कोई गाड़ी चला रहा है और कहता है कि चांस से मैं बच गया, इत्तेफाक से बच गया, मैं लकी था, तो कहते हैं वहाँ पर ये बात बिल्कुल कबूल नहीं की जाती है कि ये बाई चांस हो गया या इत्तेफाक से हो गया। ना, हर चीज़ के पीछे एक दलील होती है और एक रीज़न होता है, कोई चीज़ चांस से नहीं होती है। वो कहते हैं मेरी जवानी का वो ज़माना था जब मैं सिपाह में काम करता था, और वहाँ पर जो है उनकी ट्रेनिंग सेंटर में जाकर मैं ट्रेनिंग ले रहा था। हमारी हर दिन की क्लास ख़त्म हो जाती थी, और जब हमारा शाम का बरनामा भी ख़त्म हो जाता था, शाम का जो प्रोग्राम होता था वो ख़त्म हो जाता था, तो सब थके मांदे जाकर अपने टेंट में अपनी जगह पर सो जाते थे। मैं और मेरा एक दोस्त था जो बहुत मजाकिया थे, और हम मारूफ थे कि हम बहुत मजाकिया हैं, हम सबको सताते थे और सब जानते थे कि हम बहुत सताने वाले और शरारत करने वाले और मस्ती करने वाले अफराद हैं। तो जब सब लोग ट्रेनिंग के बाद थक जाते थे और थके मांदे जाकर अपने बिस्तर पे सो जाते थे, तो मैं और मेरे दोस्त का प्लान ये था कि हम जाकर सबको सताते थे और जगाते थे। हर एक शख्स को हम जो है टेंट में जाकर हिलाकर, कभी किसी की चादर खींचकर, किसी का ब्लैंकेट हटाकर, किसी का तकिया हिलाकर, सबको जगाते थे और फिर वापस भागे भागे आकर हमारे अपने टेंट में सो जाते थे। अच्छा, क्योंकि हम दोनों सबको बहुत सताते थे तो कोई हमें अपने टेंट में रखने के लिए तैयार नहीं था, तो इसीलिए हमारे लिए एक अलग सा छोटा सा टेंट बनाकर तमाम टेंट से दूर जो है हमें जगह दी गई थी कि ताकि हम वहाँ जाकर सोए और किसी को ना सताए, किसी को परेशान ना करे, रात में बीच में उठकर किसी को तंग ना करे, इसलिए हमें अलग से टेंट दिया गया था। अच्छा, और इस टेंट में मैंने अपना एक ख़ास बिस्तर बना लिया था। मैंने अपने लिए अपने घर से एक ख़ास तकिया लाया था और 2 ब्लैंकेट्स लेकर आया था, तो फिर मुझे जो जगह दी गई थी वहाँ पर मैंने तकिया बिछाकर बहुत ही आरामदायक मेरी सोने की जगह बना ली थी। तो फिर हम लोगों को सताते और भाग कर आकर अपनी अपनी जगह पर सो जाते थे। तो ऐसे ही एक रात मैं सबको सता कर, सबको जगा कर वापस आ रहा था। अच्छा, आप ये मत पूछिए कि इन लोगों को जिनको मैंने सताया है और रात को जगाया है, बेचारे जो थक कर सो गए थे, इनको मैंने बार बार हिलाकर उठाया है, इसके लिए मुझे कितने मेरे आमाल देने पड़े, कितने अच्छे अच्छे आमाल मेरे हाथ से चले गए, ये ना पूछे। मैं इसकी आपको गिनती भी नहीं दे सकता और बता भी नहीं सकता, बहुत आमाल मेरे हाथ से चले गए। लेकिन मैं आपकी तवज्जो एक दूसरे वाक़े की तरफ ले जाना चाहता हूँ, वो ये है कि जब मैं एक रात इन लोगों को सताकर जगाकर वापस आया मस्ती कर और अपने टेंट में जाकर सोना चाहा, तो जैसे ही मैं टेंट में एंटर हुआ तो हमारे टेंट में लाइट नहीं थी, लेकिन मैंने देखा कि मेरी जगह पर कोई और शख्स सोया हुआ है। तो मुझे लगा कि यही सोल्जर्स हमारे जो ट्रेनिंग कैंप में आए हुए थे, इनमें से कोई एक लड़का मुझे सताने के लिए आकर मेरी जगह पर सो गया। तो मैं मिलिट्री के शूज़ पहना हुआ था, उसी शूज़ के साथ मैंने एक बहुत ज़ोर की लात इसके कमर पर दे मारी। जैसे ही मैंने इसके कमर पर एक ज़ोर की लात दे मारी, वो चिल्ला कर अपनी जगह से उठा ज़ोर से कि कौन है, क्या हुआ, कौन था, किसने ये किया। तो तब मैंने देखा कि अरे, ये कोई सोल्जर या हमारा साथी नहीं है, बल्कि ये तो हाजी आगा है, हमारे गिरोह के इमाम जमात, यानी वो शख्स जो यहाँ पर नमाज़ पढ़ाया करते हैं। और बेचारे इतने डर कर वो उठे थे कि उन्होंने खौफ ज़दा होकर अपना दिल थाम लिया था, यानी उनका दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था, तो एक हाथ से बेचारे दिल थामे हुए थे और दूसरे हाथ से जो है कमर थाम कर उठे हुए थे। जैसे ही मैंने उनको देखा मैं बहुत डर गया, मैं फौरन मेरे टेंट के बाहर भाग कर आ गया और सोच रहा था कि ये क्या हो गया, ये क्या कर दिया मैंने, क्यों हाजी आगा मेरी जगह पर आकर सो रहे थे। और फिर मुझे मेरे दोस्त ने वहीं जो खड़ा हुआ था उसने बताया कि हाजी आगा को कहीं सोने की जगह नहीं थी, तो ये हमारे साथी जो थे वो चाहते थे, क्योंकि हम उन्हें हर रोज़ सताते थे तो वो चाहते थे कि वो हमको सताएं, इसलिए उन्होंने हाजी आगा से कहा कि एक बहुत ही नर्म और आरामदायक जो है बिस्तर आपके लिए तैयार किया गया है, आप वहाँ जाकर सो जाए। तो वो आकर यहाँ सो गए थे। और फिर बेचारे तब हाजी आगा बाहर आए और कहा कि क्या हुआ, क्यों तुमने मुझे ऐसे मारा, मगर मैंने क्या किया है, ऐसा क्या गुनाह कर दिया कि इतनी ज़ोर से तुमने मुझे लात मारा। और कहते कहते उन्होंने मेरे लिए बद्दुआ भी कर दी, उन्होंने कहा खुदा करे तुम्हारा पाँव टूट जाए। फ़ौरन मैं हाजी आगा के पास आया, उनका हाथ थाम लिया और मैंने उनसे कहा कि हाजी आगा गलती हो गई, बहुत बहुत माजरत चाहता हूँ, बहुत बहुत बेबख्शीद, बहुत बहुत सॉरी, मुझे लगा कोई और शख्स, हमारा कोई साथी मुझे सताने के लिए यहाँ आकर सो गया है, और मैं समझा कि वो चाहता था कि हम अज़ियत हो, इसीलिए मैंने बहुत ज़ोर की लात मार दी, और मुझे ख्याल भी नहीं था कि मैं अभी तक मिलिट्री के शूज़ पहना हुआ हूँ, बहुत बहुत सॉरी, बहुत माजरत चाहता हूँ, और मैंने उनको बहुत बहुत माजरत खाई की। फिर मैंने उनसे कहा कि बहुत शर्मिंदा हूँ, आप जाइए, आप अंदर मेरी ही जगह पर जो मैंने बनाई थी आप वहाँ सो जाइए, और मैं जाकर किसी गाड़ी के पीछे की सीट पर सो जाता हूँ, आप आराम से सो जाइए, इंशाल्लाह आपको कोई परेशान नहीं करेगा। अच्छा, मेरे फिर मैंने उनसे कहा कि बस इजाज़त दीजिए कि मेरा जो तकिया है वो मैं ले जाऊँ, और फिर उन्होंने कहा ठीक है ले जाएँ। और हमारे क्योंकि टेंट में लाइट नहीं थी, मैं अंदर गया और मेरे साथ हाजी आगा भी अंदर आए। जैसे ही मैंने तकिया उठाया मैंने देखा वहाँ पर एक बहुत बड़ा बिच्छू जो मेरे हाथ से भी बड़ा साइज़ का था, मेरे हथेली से बड़ी साइज़ का था, वहाँ बैठा हुआ था। हम दोनों डर गए और फौरन हमने जैसे तैसे करके उसे मार दिया। फिर हाजी आगा ने मेरी तरफ़ देख कर कहा तुमने मेरी जान बचा ली, अगर तुम तकिया लेने के बहाने अंदर नहीं आते और मैं आकर सो जाता तो शायद ये बिच्छू मुझे डंक लेता और मैं मर जाता, तुमने मेरी जान बचा दी, लेकिन बहुत ज़ोर की लात मारी है तुमने, अभी तक मुझे दर्द हो रहा है। फिर मैंने खुलासतन उनसे कहा कि माजरत चाहता हूँ, आप यहाँ सो जाइए, और मैंने उनके लिए बिस्तर सही कर दिया और फिर मैं जाकर कार में पीछे की सीट पर सो गया। अगले दिन जब ट्रेनिंग ग्राउंड्स में मैं ट्रेनिंग कर रहा था तो वहाँ पर एक इत्तेफाक हुआ और मैं गिरा और मेरा पाँव टूट गया। ये सारी चीज़ें पूरे जुज़ियात के साथ, माइन्यूट डिटेल्स के साथ मेरे नामे आमाल में सब्त की गई थी। तो वो मलक जो मेज़ के पीछे बैठा हुआ था उसने कहा कि जानते हो ये जो बिच्छू था इसे दस्तूर दिया गया था कि वो तुम्हें डंक ले और तुम्हें मार दे, लेकिन उस दिन जो तुमने सदका दिया था इस वजह से तुम्हारी जान बच गई और तुम्हारी मौत टल गई। तब मुझे वो फिल्म दिखाई गई जिसमें वो सदक़े का ज़िक्र उन्होंने किया, वो वहाँ पर मतरा किया गया, बताया गया कि तकरीबन असर का वक्त था। उस दिन मेरी वाइफ ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि देखे हमारे पड़ोसी जो है फलानी, उनकी हालत बहुत ख़राब है, बहुत मुश्किल में फंस गए हैं, उनके पास बिल्कुल पैसा ख़त्म हो गया और बेचारों के पास कुछ खाने पीने के लिए भी नहीं है, तो अगर तुम इजाज़त दो तो वो पैसा जो तुमने उठा के रखा है उसमें से मैं कुछ पैसे उन्हें दे दूँ ताकि बेचारों की ज़िंदगी चले और बेचारे भूखे पेट ना सोएं। तो मैंने उन मेरी वाइफ से कहा कि मगर वो पैसा तो मैंने बाइक ख़रीदने के लिए रखा है, तुम तो जानती हो हमें बाइक की कितनी ज़रूरत है। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम्हें जितना चाहिए उसमें से उन्हें दे दो ताकि उनकी मुश्किल बरतरफ हो जाए, हल हो जाए। तो फिर उस मलक ने कहा बस यही सदक़े की वजह से तुम्हारी मौत टल गई। और उस रूहानी और वो हाजी आगा जो नमाज़ पढ़ाते थे, इमाम जमात थे, उनको उन्होंने भी उस दिन कुछ ऐसा काम किया था कि खुदा की तरफ से उनको पनिशमेंट मिलनी ही थी, वो किसी ना किसी तरह मुश्किल में मुब्तला होने वाले ही थे, चाहे फिर तुम्हारी लात की वजह से या किसी और वजह से, और वो पनिशमेंट उन्हें मिलने वाली ही थी, और तुम वसीला बन गए के वो पनिशमेंट उन तक पहुंची, और उनकी बद्दुआ की वजह से अगले दिन तुम्हारा पाँव टूट गया था। फिर उस मलक ने मुझे सदक़े देने की अहमियत को बताते हुए कहा कि सूरे फातिर की 29वीं आयत है कि जो लोग खुदा की किताब की तिलावत करते हैं और नमाज बरपा करते हैं और वो जो उन्हें रिस्क अता किया जाता है उसमें से वो छुप कर या आश्कार तौर पर यानी खुले आम इन्फाक करते हैं, बहुत ही फ़ायदेमंद तिजारत और बिज़नेस की उम्मीद करने वाले हैं और ऐसा बिज़नेस जिसमें कोई नुकसान और खसारत नहीं है, या फिर वो हदीस जो इमाम बाकर अलैहिस्सलाम से मनकूल है कि सदक़ा देने से इस दुनिया की 70 बलाएँ दूर हो जाती है और सदक़ा देने से मौत भी टल जाती है। तो आप लोगों को मैं ये बताते चलूँ कि मुझे बताया गया है कि सदक़ा देना, सिले रहम करना, नमाज जमात में शिरकत करना और अहलुल बैत की ज़ियारत के लिए जाना और वो ऐसे तमाम दीनी जलसात में शिरकत करना और हुजूर रखना और ऐसा हर काम जो खुदा के लिए खालिसाना और खुदा की रिजायत के लिए अंजाम देना, ये सब चीज़ों का हिसाब हमारी ज़िंदगी के वक्त में नहीं किया जाता है और इनका टाइम हमारे ज़िंदगी के टाइम में से कम नहीं किया जाता है और इन्हीं की वजह से ज़िंदगी तूलानी होने का सबब बनता है। इंशाल्लाह आगे का मतलब अगले जलसे में बयान किया जाएगा। तब तक के लिए इल्तिमास दुआ, खुदा हाफिज़।